शिवजी का मोहित होना। श्लोक संख्या 12। अवतारा मया
दृष्टा
रममाणस्य ते गुणै
सोहं तव दृष्टुमिच्छामि
यत्ते योषित उपधृतम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अवतार, अवतार मया मेरे द्वारा दृष्टा देखे जा चुके हैं, रममाणस्य लीला करते समय ते तुम्हारे गुणे दिव्य गुणों से समन्वित सा शिवजी अहम मैं तत् वह अवतार दृष्टुमिच्छामि देखना चाहता हूँ, यत् जो ते तुम्हारा योषित वपुः स्त्री का शरीर धृतम धारण किया। अनुवाद। हे प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों का दर्शन किया है जिन्होंने आप द्वारा दिव्य गुणों के द्वारा प्रकट कर चुके हैं। अब जबकि आप एक सुंदर तरुण के रूप में प्रकट हुए हैं तो मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तात्पर्य, जब शिव जी भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। अब शिव जी अपनी मनोकामना प्रकट कर रहे हैं। ये भगवान विष्णु के अधुनातम मोहिनी मूर्ति अवतार को देखना चाह रहे थे जिसे उन्होंने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत को वितरित करने के लिए धारण किया था। ओम अज्ञानस्य निरंथस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता साधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का आज के भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास में भागवतम सुनने का विशेष महत्व तो बताया गया है। कार्तिक महीना में बताया गया कि अगर कोई भागवतम का एक चौथाई श्लोक भी सुन ले तो उसको 100 गाय दान का लाभ मिल जाता है, एक चौथाई श्लोक से। तो कार्तिक कितना विशेष महीना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी कृपा बांट रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं किसी ढंग से हम कृपा को ले लें। तो आज का ये जो श्लोक है इसमें भगवान शिव विष्णु जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना जो लेटेस्ट आपका अवतार है, मोस्ट रिसेंट, अभी अभी आपने जो लिया वो मैं देखना चाहता हूँ। अवतारा माया दृष्टा वो मैं देखना चाहता हूँ। इससे पहले भी हरम मानस्य ते गुण, आपने बहुत से अवतार लिए हैं, हर अवतार में जो लीलाएं की हैं मैं उसको देख चुका हूँ, तो ये भी मैं देखना चाहूंगा। सोहम तद्दृष्टु इच्छामि, वो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा स्पेशल है। इसमें आप एक योषित व पुत्रितम, आपने एक स्त्री का रूप धारण किया है, तो बड़ा क्यूरियस हूँ मैं, बहुत जिज्ञासा है मेरे को देखने की कि कैसे आप दिखते हैं एक स्त्री के रूप में। आप परम पुरुष हैं लेकिन स्त्री का रूप आपने धारण किया है, तो बहुत इच्छा हो रही है देखने की। इससे पहले शिव जी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की भगवान को कि आप तीनों गुणों से परे हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, कर्ता हैं, आप प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो भगवान भी जान के भगवान ने बोला बहुत प्रार्थनाएं होगी, चाहते क्या हो बताओ, क्यों आए हो, क्या इच्छा है तुम्हारी। तो कह रहे मेरी इच्छा ये है, मैं आपका रूप देखना चाहता हूं। तो इस अध्याय का नाम है मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। तो जब ये अध्याय हम पढ़ेंगे सुनेंगे या इसके बारे में कहेंगे तो बड़ी सावधानी ये बरतनी चाहिए। आगे जाके हम देखेंगे कि बिल्कुल काफी एक्साइटिंग आगे एपिसोड शुरू होने वाला है। मोहिनी मूर्ति भगवान अपना ऐसा सुंदर रूप दिखाएंगे कि शिव जी बिल्कुल मोहित हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना कि शिव जी देखिए कैसे मोहित हो गए, नहीं, ये एक विशेष लीला है। और विष्णु चक्र ठाकुर जी कहते हैं कि शिव जी का मोहित होना कोई शर्म की बात नहीं है, उनके लिए एक आभूषण है। किससे मोहित हो रहे, भगवान से मोहित हो रहे। तो ये बहुत सुंदर लीला, इसको इस दृष्टिकोण से देखना है। भागवतम का अर्थ है भगवान का गुणगान और भक्तों का गुणगान, और वैष्णव नाम यथाशंभु उनका गुणगान है, उनका इस आभूषण है कि वो मोहिनी मूर्ति से मोहित हो गए। तो इस पे आज हम मुख्यतः तीन बातों पर चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ शिवजी की स्थिति पर चर्चा करेंगे और शिवजी और विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंतिम इंटीमेट संबंध उनकी चर्चा करेंगे, और इस प्रसंग से विशेषकर श्लोक से कुछ हमारे लिए साधकों के लिए शिक्षा है। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, एकोयम बहुस्याम, अपना विस्तार भगवान स्वांश में भी करते हैं और विभिन्नांश में भी करते हैं, और भगवान परम पुरुष हैं, क्योंकि सबका विस्तार भगवान से ही हुआ है। इसलिए एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ही पुरुष हैं, स्वामी हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। स्वांश भी सेवक है, विभिन्न अंश भी सेवक है, लेकिन अंतर यह है जो स्वांश है, जैसे पहले विस्तार है बलराम जी, वो सेवक तो है लेकिन साथ साथ परम पुरुषोत्तम भगवान भी है। वो पुरुष है और लेकिन एक भगवान है लेकिन सेवक के रूप में है। जीव भी विभिन्न अंश है, जीवी जीव प्रकृति है और भगवान पुरुष है। शिव जी क्या है, शिव जी ना जीव है ना विष्णु है, ना स्वांश है ना विभिन्न अंश है। तो शिव जी की बड़ी विशेष स्थिति है, फिर भी शिव जी को पुरुष माना गया है। क्यों पुरुष माना गया है, क्योंकि वे महामाया के पति हैं, महामाया उनकी भार्या हैं, तो वो पति हैं, और अभी तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया कि वो महामाया से विचलित भी हुए हों। बल्कि देखने में तो ये आया, दुर्गा जी को अपने गोद पे बिठा के संतों के बीच में भागवतम का पाठ करते हैं, ये उनका ऐश्वर्य है। तो शिव जी भी पुरुष हैं लेकिन एक भक्त के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, और बलराम जी भी पुरुष हैं लेकिन भगवान के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन हैं वो दोनों ही सेवक। तो ये बात समझने की है, कि शिव जी भी पुरुष हैं लेकिन सेवक हैं और एक भक्त के रूप में वो साधना करते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं। और अब जब शिव जी का बहुत ही अंतरंग संबंध है भगवान से, हम जानते हैं वृंदावन में शिव जी क्षेत्रपाल हैं, नंद गांव के बाहर शिव जी किस रूप में उपस्थित हैं, नंदीश्वर महादेव। जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे थे तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्षेत्रपाल बने नंदीश्वर महादेव के रूप में। इसी ढंग से गोवर्धन में मानसी गंगा के पास शिव जी स्थित हैं किस रूप में, क्षेत्रपाल के रूप में चकलेश्वर महादेव। कामेवन में भी स्थित हैं क्षेत्रपाल के रूप में कामेश्वर महादेव, और वृंदावन में स्थित हैं गोपेश्वर महादेव। इन सब में जो गोपेश्वर महादेव का जो रूप है बड़ा विशेष है। शिव जी जैसे यहां पे बड़े जिज्ञासु हैं भगवान का मोहिनी रूप देखने के लिए, वैसे ही शिव जी में बहुत जिज्ञासा हुई भगवान की रासलीला देखने के लिए। तो बहुत तपस्या की ब्रज में आके उन्होंने, तो उनकी तपस्या से पूर्णमासी बहुत प्रसन्न हो गए। पूर्णमासी जो कि योग माया है, भगवान उनको आज्ञा दी, मेरे परम भक्त तपस्या कर रहे हैं, आप जाकर उन पर कृपा करो। तो पूर्णमासी एक वृद्धा स्त्री के रूप में आती है और पूरे ब्रज में सभी गोपियों की वो काउंसलर हैं, उनको सलाह देती हैं किस प्रकार से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो पूर्णमासी से शिव जी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो शिव जी को देखा पूर्णमासी ने, बोला इस रूप में तो आप जा नहीं सकते, रासलीला में सब भाग जाएंगे आपको देख के, तो आपको एक गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा। तो उनको मानसरोवर में ले गए और मानसरोवर में उन्होंने डुबकी लगाई और बाहर आए तो बहुत सुंदर गोपी बनी हुई शिव जी, और वो रासलीला की स्थली पे चले गए वंशी वट पे। सब गोपियों ने देखा कोई नई गोपी आई है बड़ी सुंदर सी, तो उसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पति का नाम क्या है, कहाँ रहते हो, पति क्या करते हैं। शिव जी बिल्कुल ब्लैंक, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। तो सब गोपियां समझ गई ये तो हमारे में से नहीं है, बाहर की है। तो उनके गाल पे ऐसे थप्पड़ मारने लगे, बता कौन है। शिव जी बड़े परेशान, अब तो उनको तो जो उनकी गुरु थी पूर्णमासी थी, वो बुला पुकारने लगे पूर्णमासी को। पूर्णमासी वहीं प्रकट हो गई, उन्होंने बोला रुको 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 ऐसे मत करो, ये शिव जी हैं, स्वयं महादेव हैं, ये रासलीला का दर्शन करने आए हैं। तो गोपियों ने बोला ये एंटर थोड़ी कर सकते हैं, पुरुष भाव में तो कोई एंटर कर ही नहीं सकता, पुरुष केवल कृष्ण ही है। उन्हें ठीक है, ये यहीं रहेंगे, रासलीला देखने दो, और शिव जी आपकी ये अब ये कर्तव्य है किसी भी अयोग्य व्यक्ति को अंदर मत आने देना। तो शिव जी तब से स्थित हैं वहां पे वंशी घाट पे। और अगर कहा जाता है कि ब्रज में कि जब शिव जी का वैसे तो दिन में उनकी पूजा होती महादेव के रूप में, और सायंकाल में गोपेश्वर महादेव को सजाया जाता है गोपी के रूप में, कि वो गोपी का श्रृंगार करते हैं क्योंकि वो रासलीला का भी दर्शन करते हैं। तो शिव जी इस प्रकार से भगवान के बहुत अंतरंग हैं। इसी ढंग से उनकी जिज्ञासा हुई थी जब भगवान प्रकट हुए, चलो मैं बाल गोपाल जी का दर्शन करके आता हूँ। तो ब्रज में ऐसी कथा है, वृंदावन में लोग ये कथा सुनाते हैं कि जब वो 12 दिन के हो गए थे कृष्ण, तो शिव जी गोकुल में आए और इतने पागल थे, इतने उन्मत्त थे भगवान के प्रेम में कि अपना रूप ही नहीं बदला उन्होंने, वैसे के वैसे ही आ गए। और यशोदा माता के द्वारे पर पहुंचते कि भिक्षा दे ही, भिक्षा दो, अगर भिक्षा मांगनी थी तो भिक्षु के रूप में आते, लेकिन शिव जी के रूप में ही हैं, सांप डाले हुए हैं, बिच्छू चल रहे हैं, और बोले भिक्षा दे ही। तो यशोदा माता ने देखा है, तो यशोदा माता भी कृष्ण के प्रेम में इतनी बिल्कुल पूरी एब्जॉर्ब है, वो पहचाने नहीं पाई कि शिव जी हैं। तो बड़े साधु वहीं रहना, बस अंदर मत आना, मेरा जो लाला है वो आपको देख के डर जाएगा, अभी आपके लिए बढ़िया सा प्रसाद ला रही हूँ वो ही लेना। बोले मुझे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, बस आपके कहना कि मुझे दर्शन करने हैं। ईश्वर जी बोला वो तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आपके दर्शन करा के वो तो रो पड़ेंगे, डर जाएंगे, आप वहीं रहिए, आपको मैं सब कुछ दे देती हूँ। वो शिव जी ने बोला भाई कुछ नहीं चाहिए, आपने जानते हैं मेरी पत्नी कौन है, अन्नपूर्णा है, मुझे किस चीज की जरूरत है, मैं तो स्पेशल आया उनके दर्शन करने के लिए। ईश्वर माता ने बोला देखो साधु जी वहीं रहो जहां पे हो, आपको मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी ने कहा मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, चाहे मैं 10,000 साल क्यों ना खड़ा रहूंगा, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा, और 10,000 साल तो वेट करूंगा, तब तो आप कृष्ण बड़े हो जाएंगे, तब तो आप उनके कंट्रोल आपके कंट्रोल में रहेगा नहीं, तो मैं आपको देख लूंगा। यशोदा माता ने कहा तुम 10,000 साल तक रहोगे, मैं ये दरवाजा 20,000 साल तक बंद कर दूंगी और एक नया दरवाजा खोलूंगी जहां से जाएगा मेरा बच्चा और तुम देख भी नहीं पाओगे। और भगवान भी सुन रहे थे अपने दो परम भक्तों की बातचीत, भगवान ने कुछ कहा नहीं, चलने दो। तो शिव जी कहा ठीक है, आप मेरे को नहीं दिखा रहे दर्शन नहीं करा रहे, तो मैं वहीं बैठा हूं प्रतीक्षा कर रहा हूं गांव में और देखना आप खुद आएंगे मुझे बुलाने के लिए। तो शिव जी चले गए। जैसे ही शिव जी गए भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यशोदा माता परेशान होगी, उनको शांति नहीं करा पा रही। तभी एक दूसरी सखी आई यशोदा माता की, बोले क्यों इतना रो रहा है, पहले तो कभी इतना रोया नहीं, तो क्या तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति रुष्ट होकर गया है? रुष्ट तो कोई जाता नहीं, तुमको याद आया हाँ एक बाबा आया था वो रुष्ट होकर गया है, कहते उसको बुला लो। कहते वो बहुत खतरनाक है, अंदर आ गया सांप गिर गया बिच्छू गिर गया, तो रुष्ट होकर गया है तुम्हारे घर से, तभी कृष्ण रो रहे हैं, तो बोले जा बुला के लाओ। उनका डिस्क्रिप्शन दिया तो सखी जाती है ढूंढने और उनको शिव जी दिखाई देते हैं, उनको बुलाते हैं और यशोदा मैया खुद कृष्ण को लेके जाती है और शिव जी को गोद में उठाते हैं, उनके चरणों को अपने सर पे लगाते हैं। तो ये बहुत ही विशेष संबंध है शिव जी का कृष्ण के साथ। तो इतने विशेष संबंध है क्योंकि वो इतने अंतरंग उनकी सेवा करते हैं, इसलिए एक बहुत ही एक फ्रेंडली जोकिंग चल रहा है, किसकी हिम्मत होगी भगवान के पास जाके दिखाओ यार लेटेस्ट अवतार जरा। कोई देवता कह सकते हैं, देवता भगवान को तभी पुकारते हैं जब मुसीबत में हो, रक्षा करो, पहले गुणगान करें फिर बोले रक्षा करो। ब्रह्मा जी भी तभी पुकारते हैं कि पृथ्वी का भार दूर करो तभी आइए। शिव जी तो पूरी पत्नी और अपने पार्षदों के साथ गए, कोई मूवी देखने जाते हैं जैसे चलो आज आपको लेटेस्ट अवतार दिखाएंगे, तो बड़े जोकिंग उसमें गए हैं कि आप दिखाइए जरा अपना लेटेस्ट अवतार, मैं देखना चाहता हूँ। और शिव जी भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, भी आपने मैंने विष पिया था तभी अमृत आया, उसी अमृत को लेकर आप प्रकट हुए मोहिनी रूप में, आपने दैत्य लोग आपसे मोहित हो गए, दैत्यों की तो प्रकृति है कामुक व्यक्ति हैं वो आपसे मोहित हो गए, देवतागण थे वो तो मोहित हुए नहीं, वो सतोगुण में थे और मैं तो महादेव हूं तो मैं तो कोई मोहित होऊंगा नहीं, अभी तक ना मैं महामाया से मोहित हूं, जो ये महामाया जो मेरी पत्नी है वो सबको मोहित करती रहती है लेकिन मुझे मोहित नहीं कर पाई, ये आपकी बहिरंगा शक्ति है। और अंतरंगा शक्ति के भी मैं कई बार दर्शन कर चुका हूँ, श्रीमती राधा रानी के लक्ष्मी जी के मैं दर्शन कर चुका हूँ, तो मैं मोहित हुआ नहीं, तो मैं देखना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे आपने स्त्री का रूप लिया, मैं देखना चाहता हूँ। और भगवान भी मुस्कुरा रहे थे, मैंने ठीक है अगर आप मजा लेने आए हो तो मैं तो रसिक शेखर हूँ, मैं तो लूंगा, आप भी लेना चाहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। और भगवान कहते हैं ठीक है, और आपका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अभी तक, आप बिल्कुल मोहित नहीं हुए, और वैसे ये जो अवतार है मेरा ये सब में कामुक इच्छाएं पूरी करता है, कामुक इच्छाएं जगा देता है, लेकिन आप में नहीं होगा, आप तो धीर व्यक्ति हैं आपको कोई मोहित कर नहीं सकता। श्री श्री राधा राधे करमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ वंदे सुभद्रा महाराज की। तो आप ये जो मेरा अवतार है ये कामुक इच्छाएं उत्पन्न करने के लिए, बट आप में कुछ नहीं होगा, बाहरी रूप से ये कह रहे हैं, बट हमारे आचार्य विष्णु आचार्य ठाकुर जी समझा रहे हैं कि अंदर से भगवान कह रहे हैं कि देख लो, आप देखना चाहते हो दिखा दूंगा, कुछ हुआ तो मुझे मत कहना मुझे आरोप मत लगाना। और भगवान भी कह रहे हैं बड़ा अच्छा मौका है, इनकी पत्नी भी साथ में है, इनके पार्षद भी साथ में है, मजा और बढ़ गया, अकेले में मोहित करता तो इतना फर्क ना पड़ता, अब साक्षात इनकी भार्या भी है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इनका, और इनके पार्षद इनके साथ हैं, और ऐसी ऐसी जगह ले जाऊंगा बड़े बड़े संतों के बीच में इनको दिखाऊंगा, ठीक है आप देखना चाहते हैं तो जरूर दिखाऊंगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मान जाते हैं। भगवान का वर्णन विष्णु पुराण में आता है, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य यशाश्री ज्ञान वैराग्यश्च वशान भगवती गणा, षड ऐश्वर्यपूर्ण है भगवान, बहुत धनी है और सुंदर है, बलवान है, यशवान है, ज्ञानवान है और वैरागी है। इन छह के छह ऐश्वर्यों में सबसे प्रमुख ऐश्वर्य कौन सा है भगवान का? छह ऐश्वर्यों में सबसे प्रमुख कौन सा है? सुंदरता। जय धर्म में भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं इन छह ऐश्वर्यों में सुंदरता प्रिंसिपल है, मेन है, जैसे कि वो शरीर है और बाकी उनके अंग या उनकी कांति है। ऐश्वर्य में सुंदरता को मुख्य शरीर बताया गया है, यश बल और तीसरा कौन सा बचा है, ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य को उनकी कांति बताया गया है, और यश बल और धन को उनका अंग बताए गए हैं, और मुख्य शरीर है उनकी सुंदरता। तो वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण जब षड ऐश्वर्य कौन सुंदर और एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होंगे तो क्या होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से बिल्कुल बाहर है।
और ये जो बातचीत भी हो रही है शिव जी और विष्णु के बीच में, ये ऐसे धरातल पे है। शिव जी भी मात्सर्य रहित हैं, काम वासना रहित हैं, भगवान भी पूर्ण रूप से परम सत्य हैं। तो ये बातचीत हम लोगों के मन में, हम लोग के मन और बुद्धि से हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि दूषित है काम वासनाओं से, ईर्ष्या से। लेकिन ये सुनकर सही विनीत भाव से आचार्यों के शरण लेते हुए समझने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत शुद्धिकरण के लिए है। तो इस ढंग से भगवान शिव जी की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हैं और फिर अपने सामने शिव जी के सामने बहुत सुंदर रूप प्रकट करने वाले हैं, मूवी स्टार्ट होने वाली है। और शिव जी तो मूवी देखने आए थे, उनको क्या पता था कि वो इसी फिल्म के बहुत सुंदर हिस्सा बनने वाले हैं। हम लोग जब चलचित्र देखने जाते हैं हम कभी आशा नहीं रखते, ठीक है वो चलचित्र हमें बहुत इंप्रेस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, लेकिन हम उठ के पर्दे के अंदर नहीं चले जाएंगे। लेकिन अब शिव जी बहुत शीघ्र, उनको मालूम नहीं क्या होने वाला है, बिल्कुल एक विशेष चरित्र बनने वाले हैं इसी चलचित्र के। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं और साथ में बड़े गंभीर हैं। कि भगवान गंभीर इसलिए हैं कि सोच रहे हैं कि किसी से तो मोहित हुए नहीं, मुझे ऐसी कौन सी भाव भंगिमा दिखानी पड़ेगी कि इनको मोहित करो। ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, असुरों के सामने तो मैंने थोड़ा सा मुस्कुराहट दी वो पागल हो गए, उनको मेरी मुस्कुराहट इतनी अमृतमय लगी वो अमृत भूल गए। इनसे खाली मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा, इनके सामने बहुत विशेष भाव प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तभी वो अच्छा एक आनंद आएगा मुझे भी और इनको भी। तो इसलिए भगवान ने बहुत तरह तरह के सुंदर भाव भंगिमा दिखाई और शिव जी बिल्कुल मोहित हो गए। और मोहित होकर शिव जी उनके पीछे भागे आगे कि हम पड़ेंगे। और भगवान भी, भगवान तो लीला कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पर्वतों में, ऐसी ऐसी गुफाओं में, जंगल में ले गए जहां ऋषिगण तपस्या कर रहे थे, सबके सामने से होते हुए गुजरे, लाइव दर्शन कराया सबको, देखिए गए। अभी देख लीजिए शिव जी हैं एक सुंदर स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, देख लो आप सब। तो बड़ा सुंदर संदेश दे रहे हैं उन संतों को भी कि शिव जी की यह स्थिति हो सकती है, तो आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि हम बड़े, हमारे मन पे, हमारी इंद्रियों पे संयम हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड नेवर थिंक हिमसेल्फ लिबरेटेड इन द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। सुंदर स्त्रियों के बीच में कोई अपने आप को मुक्त समझने की गलती ना करे, है ना। कभी भी किसी भी समय कुछ हो सकता है। अभी तक हमारा रिकॉर्ड ठीक है, ऐसा नहीं है कि भविष्य में भी रहेगा। साधु सावधान, सावधानी बरतनी हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है, विशेषकर आज के इस कलयुग में। तो अब हम कुछ चर्चा करते हैं कि कैसे हम इससे कुछ सीख सकते हैं। देखिए, जो मैं समझ पाया इस श्लोक से, शिव जी बड़े आतुर थे भगवान का विशेष रूप देखने के लिए, और शिव जी अपनी भार्या को भी लेकर आए, और शिव जी ये भी सोच रहे हैं, आचार्य गण बता रहे हैं विष्णु चक्र ठाकुर जी, कि मैं पहले भी कभी मोहित हुआ नहीं, और दैत्य मोहित हो गए, देवता भी मोहित नहीं हुए, मैं तो महादेव हूं। तो यहां से देख सकते हैं कि एक साधक के मन में कई बार एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। कॉम्प्लेसेंसी को हिंदी बोलेंगे एक क्या कह सकते हैं, ढीलापन आ जाता है। इतने लंबे अरसे से अच्छी साधना करते करते एक झूठा विश्वास जागृत हो जाता है कि मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 16 माला चार नियम बड़े अच्छे ढंग से पालन कर रहा हूं, 15-20-25 साल हो गए हैं, रिस्पेक्टेबल आदरणीय व्यक्ति हूं, तो बढ़िया चल रहा है, है ना। तो ये होना बड़ा खतरनाक है। थोड़ी सी भी कंप्लेसेंसी आती है, ढीलापन होता है, माया का तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, माया को बहुत बड़ा गेट खोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, माया उसमें से प्रवेश करती है, एक क्रैक भी मिल गया और फिर अपनी जगह माया खुद बना देती है। हम लोग भारतीय रेल में ट्रेवल करते हैं, चाहे रिजर्वेशन हो या ना हो, हम देखते हैं, विशेषकर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे, ईस्टर्न यूपी और बिहार से होते हुए जाएंगे, बुरा ना माने वहाँ के लोग, तो हम देखते हैं कि अगर आपकी रिजर्व टिकट भी है, एसी में भी है, जैसे भी है, कंपार्टमेंट हमेशा भरा ही रहता है। और ऐसे लोग आए थे जिनके पास कोई टिकट नहीं है, और बुला लेंगे, बोले थोड़ा सा बैठने दो भैया, कुछ तो दया करो, साधु हो, थोड़ा सा बैठ जाते हैं कोई, और धीरे धीरे क्या होता है कि आप खड़े हो जाएंगे, वो बैठे होते हैं आराम से खिसका खिसका के। तो माया ऐसी ही है, थोड़ा सा भी हम चांस देंगे वो तुरंत प्रवेश करेगी और अपनी जगह बना लेगी। तो ये ढीलापन थोड़ा सा भी आना बहुत खतरनाक हो सकता है एक साधक के लिए। ये ढीलापन के कुछ कारण कंप्लेसेंसी के कुछ कारण जो मैं सोच पाया, मैं मुख्यतः दो कारण सोच पाया, एक प्राइड, अपने पे गर्व होना, अभिमान होना अपने ही परफॉर्मेंस पे कि अभी तक सब ठीक चल रहा है, मेरे सामने कितने आए कितने चले गए, लेकिन मैं एक सुदृढ़ खड़ा हूं अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक प्राइड आ जाती है, एक वध जीव के अंदर अभिमान आना बड़ा स्वाभाविक है, छोटी छोटी बात पे उसको गर्व हो जाता है, छोटी छोटी बात पे वो गर्वित हो जाता है, सबसे पहले मैं आ गया, शंख बजने से पहले सबसे पहले ये मैंने कर लिया। बचपन से हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हो जाए, बच्चे अच्छा बच्चा वो है जो सबसे पहले आता है, तो हम लोग बात कुछ भी बात हो हम गर्वित हो जाते हैं, बदजीव गर्वित हो जाते हैं। तो ये प्राइड आ जाती है तो उससे हम ढीला पड़ना शुरू हो सकते हैं। दूसरा जो मैं सोच पाया इस कंप्लेसेंसी का कारण कि बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन, जैसे कि हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो कुछ सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, कुछ स्वतंत्रता, कुछ स्पेस मिलता है, कुछ सुविधाएं मिलती हैं, और उन सुविधाओं के बीच में हमारे जो तपस्या करने की, जो सख्त साधना करने की जो जरूरत होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, और हमें भी लगता है कि अब हम थोड़े से वरिष्ठ हो रहे हैं, इतना हमें कंफर्ट्स चाहिए, और ठीक चल रहा है, अभी भी साधना अच्छी चल रही है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये बड़ा झूठा विश्वास, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। और इस प्रकार के जैसे कि माया से हमारा ये युद्ध है जो हम साधना कर रहे हैं, और जो काम वासनाएं हैं, भगवान गीता में कहते हैं नित्य वैरी है हमारा, हमारा नित्य शत्रु है, नित्य शत्रु के प्रति युद्ध के समय हम कुछ ढीलापन नहीं छोड़ सकते, मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसलिए नित्य शत्रु के पते ही नित्य लड़ाई चलती रहनी चाहिए। एक बारी परम पूजनीय सुबक स्वामी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद ये हृदय से काम वासना कब जाएंगे? प्रभुपाद ने बोला नेवर, कभी नहीं जाएंगे। सुबक स्वामी महाराज जी अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, कुछ समय के बाद दोबारा उनको मौका मिला, एक नए ढंग से यही प्रश्न पूछा, प्रभुपाद हृदय में जो काम वासनाएं हैं बहुत प्रताड़ित करती हैं, कब वो दिन आएगा जो मेरा हृदय शुद्ध होगा? प्रभुपाद बोला नॉट टिल द एंड, अंतिम समय तक ये काम वासनाएं रहेंगी। फिर सुबक महाराज बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए, बोले कुछ और तरीके से पूछता हूं। फिर कुछ समय के बाद फिर प्रभुपाद जी के पास गए और फिर बोलने लगे, शिला प्रभुपाद शास्त्रों में बताया गया है कि ये काम वासना हमारे नित्य वैरी है, कब मैं इसे छुटकारा पाऊंगा? फिर प्रभुपाद बोला गोविंद इच्छा, जब गोविंद की इच्छा होगी तब हमारे हृदय से काम वासनाएं जाएंगी। हम जितनी मर्जी सख्त साधना कर लें, जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, मुख्य उद्देश्य हमारी साधना का, नवदा भक्ति का यह है कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सके। हमारे नित्य वैरी हमारे नित्य हितेशी से ही जाएगा, नित्य बद जीव नित्य वैरी से कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल असहाय है हम काम वासनाओं से। इसलिए हम ऐसे साधना करें, ऐसी तपस्या करें, ऐसी प्रार्थनाएं करें कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाए, केवल वही हमें इससे छुटकारा दिला सकेंगे, अन्यथा एक बदजीव का कोई भी इसमें स्कोप नहीं है। तो ये जो ढीलापन भक्ति में आता है इसका प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे ये एक्ट करता है? धीरे धीरे जैसे हम थोड़ा भक्ति में ढीले होते हैं, आप सबने अपने साधना में अपने भक्ति के जीवन में महसूस किया होगा कि हमारी पुरानी आदतें पनपनी शुरू हो जाती है, क्योंकि साधना का अर्थ है पुरानी गलत आदतों को दबाना और नई अच्छी आदतें विकसित करना, और अगर हम साधना में थोड़े ढीले पड़ गए तो जो पुरानी आदतों को हम उसको अवॉइड करने का प्रयास कर रहे थे वो दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाती है, और वो बहुत आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। पुरानी आदतें हमें हमारी श्रद्धा में दरार ला सकती हैं और हमें भक्ति से बहुत दूर ले जा सकती हैं। कई बार बड़े अच्छे अच्छे भक्तों को भक्ति के मार्ग से डेविएट होते हुए देखा है। क्यों? शुरुआत कैसे होती है? थोड़े से ढीलेपन से पुराने कुछ संस्कार, पुरानी धारणाएं, कंसेप्ट आ जाते हैं,
और उनको हम भक्ति में मिश्रित करके एक अलग रास्ता कई बार आ जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के साथ एक शिष्य थे जिनकी रुचि बहुत बढ़ गई योगिक प्रैक्टिस करने में और नेचुरल प्राकृतिक सुधार करने में, नेचुरल हीलिंग में। वो इतना उसमें अंदर घुस गए कि उन्होंने अपने रसायन बनाने शुरू कर दिए। और एक बार प्रभुपाद जी के साथ टैक्सी में जा रहे थे पीछे बैठ के, तो प्रभुपाद को सलाह मशवरा देने लगे, प्रभुपाद ये मैंने रसायन बनाया जो आपके लीवर के लिए बड़ा अच्छा है, ये मैंने रसायन बनाया जो आपके हृदय के लिए बड़ा अच्छा है। प्रभुपाद चुपचाप सुनते रहे और चैंटिंग करते रहे। तभी टैक्सी के ड्राइवर ने बोला, स्वामी जी लगता है मेरे गाड़ी की ब्रेक काम नहीं कर रही। प्रभुपाद ने बोला, इसका कोई रसायन है आपके पास? तो व्यक्ति चुप हो गया, घबरा गया। प्रभुपाद चैंटिंग करते रहे। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति ने बोला, स्वामी जी डोंट वरी, ब्रेक लगता है ठीक हो गई है। प्रभुपाद ने बोला, चैंटिंग इज द सॉल्यूशन, ओनली चैंटिंग कैन सेव अस, नथिंग एल्स कैन सेव अस। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग भक्ति में थोड़ा सा भी ढीलापन होंगे और अपनी पुरानी आदतों को हम जागृत करते हैं। शिला भक्ति सेना सर ठाकुर महाराज कहते हैं कि जैसे ही एक शिष्य अपने गुरु के दिए हुए आदेशों को भूलता है, वो अपने हृदय को खोल देता है और आमंत्रित करता है सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को अंदर प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है। तो माया हमें बताएगी सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये इससे हम देखते हैं कि कॉम्प्लेसेंसी से हमारा पुरानी आदतें विकसित होती है और हमारी श्रद्धा कट सकती है, ये हमें भक्ति के मार्ग से दूर ले जा सकती है। दूसरा जो कारण था, एक तो कॉम्प्लेसेंसी के हमने दो कारण चर्चा किए और जो दूसरा हमने कहा कि इस श्लोक से हम देख सकते हैं कि शिव जी बड़े आतुर थे, जिज्ञासु थे, क्यूरियस थे, है ना, क्या रूप है देखो। आध्यात्मिक ईश्वर के बारे में जिज्ञासु होना बड़ी अच्छी बात है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार भक्त लोग साधना करते हुए भी भौतिक वस्तुओं के प्रति भी बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं। अच्छा नया लेटेस्ट मोबाइल फोन कौन सा है, 6G आ गया, 7G आ गया, ये आ गया, ये मॉडल है, ये है, तो बड़े हम क्यूरियस हो जाते हैं और फिर देखना चाहते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे कैसे है। और कई बार हमने देखा है अच्छे अच्छे भक्त बड़े विचलित हो जाते हैं, ये नए नए जो गैजेट्स हैं इतने ज्यादा हमें ऑप्शंस देते हैं और हमारे हाथ में है बढ़िया, और वही कर रहा है टेस्ट करो, देखो देखो टेस्ट में, और एक बटन प्रेस हुआ एक नया दुनिया खुल जाती है और एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जो कि हमारी भक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। कितने ही भक्तों ने बताया कि पदोजी पता नहीं चला कैसे गलती होगी, क्या हो गया, पता नहीं ये साइट खुल गई, ये खुल गया, पता नहीं चला, खाली एक फिंगर टच किया, बस इच्छा भी नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया। ये बहुत बड़ी बीमारी है। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, सीता मैया राम जी को परामर्श दे रही है। एक ही बारी मैंने देखा रामायण में कि सीता मैया राम जी को परामर्श दे रही है, लेकिन ये परामर्श बड़ा जबरदस्त है। उन्हें कहा कि एक बार एक ब्राह्मण था जो कि जंगल में बहुत बढ़िया तपस्या कर रहा था, इतनी सुंदर तपस्या कर रहा था कि इंद्र जी घबरा गए, ये कहीं मेरा पत्नी नहीं ले जाएगा। तो इस बार इंद्र जी ने एक नई तरकीब सोची, अक्सर तो किसी अप्सरा को भेज देते हैं, इस बार उन्होंने अप्सरा को नहीं भेजा, खुद एक राजा बन के गए और उस ब्राह्मण की कुटिया में गए। वो बोला कि ये मुनिवर मैं एक राजा हूं, ये मेरे पास एक तलवार है, ये चांदी की तलवार जरा एक मिनट में रखेंगे, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, कहीं और रख नहीं सकता, आपके पास संभाल इसको संभाल के रखिए। उनको तलवार देके चले गए और जो मुनिवर थे वो तपस्या करते थे, तलवार अपने साथ रखी कि अभी आ जाएंगे ले जाएंगे। काफी समय बीत गया, इंद्र जी आए नहीं, तलवार उनके पास पड़ी रही। अब वो कहीं भी जाते थे, फल फूल भी चुनने जाते थे अपनी तपस्या के लिए, साधना के लिए, तो क्योंकि किसी की भेंट थी छोड़ के जा नहीं सकते थे, उठा के जाते थे तलवार। अब उसी तलवार का इतना उन्होंने संग कर लिया कि धीरे धीरे उनके हाथ में तलवार थी, राजा तो आया नहीं, चांदी की तलवार है, एक बार देखो देखूं तो उसी क्या है, खोल के देखा, वाह बहुत सुंदर है, फिर रख दी, फिर संग हुआ, पड़ी रही तलवार साथ में, चलो क्या करती क्या है, काट के देखा, अरे वाह ये तो फल फूल काट देती अपने आप, वो भी काटने लगे, फिर देखा और देखो इसी कितनी तेज धार है, फिर छोटे छोटे पक्षी उन पे चला दिया, अरे वाह पक्षी भी मरने लगे तो बड़ी तेज धार है, पशुओं को मारना शुरू कर दिया और धीरे 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 अपनी तपस्या से वो पतित हो गया। एक तलवार के संग मात्र से। क्यूरियस था, देखूं तो सी क्या है। इसी ढंग से हम लोगों में बड़ी जिज्ञासा हो जाती है, अरे देखूं तो सी ये ऑप्शन क्या है, क्या फर्क पड़ता है इस ऑप्शन, देख तो देखूं तो सी माया कितनी खतरनाक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, टेबल फैन चल रहा है, आप देखेंगे बच्चे को जाके उंगली डाले, देखो तो क्या चल रहा है, इसे कभी देखे नहीं मैंने चीज। छोटा बच्चा बड़ा जिज्ञासु होता है, लेकिन वो क्या है, चलते हुए पंखे में अपनी उंगली डालने का प्रयास कर रहा है। इसी ढंग से हम भी माया के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कई बार, स्पेस देते हैं, आइए देखो तो सही कितनी खतरनाक है। श्री प्रभुपाद जी कहते थे अपने शिष्यों को, मुझे अपने शिष्यों से यही शिकायत है कि वो माया से डरते नहीं है। माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक फूक मारने की भी जरूरत नहीं है माया को हमारे जैसे जीवों के लिए, एक इशारा ही काफी है। तो इसलिए जिज्ञासु होना ठीक है। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो प्रभुपाद जी शैली अग्रवाल के यहाँ रुके हुए थे, तो उन्होंने पहली बारी वैक्यूम क्लीनर देखा। प्रभुपाद बड़े जिज्ञासु, कैसे ऑपरेट करते हैं, पूरा खोल के देखा समझा। लेकिन प्रभुपाद की स्थिति है, प्रभुपाद हर चीज को कृष्ण से जोड़ते हैं, हमारे में वो स्थिति नहीं, हम तो उसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे खड़े थे अपने शिष्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी वहां से एक बहुत सुंदर महिला निकल रही थी। शिष्य युवा थे, वो सुंदर महिला को ऐसे देखते रहे और वो ऐसे देख रहे थे प्रभुपाद उनको देख रहे थे। जब वो वापिस ऐसे आए तो देखा प्रभुपाद उनको देख रहे, तो बड़े शर्मिंदा हुए, अपनी आंखें चुका ली, पकड़े गए सरे आम रंगे हाथ पकड़े गए। तो ऐसे किया तो प्रभुपाद बोला बहुत सुंदर थी, तो बेचारा और शर्मा गया और आंखें झुक गई नीचे। प्रभुपाद ने बोला अगर क्रिएशन इतनी सुंदर है तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा। तो ये है, हम लोग तो क्रिएशन में ही मस्त हो जाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं, है ना। हम बड़े क्यूरियस रहते हैं, ये नई चीज कौन है, ये नया चेहरा क्या है। तो कहा जाता है एक बार, इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु कह रहे थे अपने लेक्चर में, जो पहली नजर होती है वो इनोसेंट हो सकती है, दूसरी नजर डेलिब्रेट होती है जानबूझकर, और तीसरी नजर में आप विक्टिम हैं, शिकार हो चुके हैं, तब तक वो हमें खींच लिया जाता है। वी आर जस्ट सक्ड इन, हम अपने आप को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक अपनी विवेक बुद्धि खो चुके होते हैं। इसीलिए पहली नजर में ही खट बुक देना चाहिए, क्योंकि जो काम वास्ते सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं इन नेत्रों के माध्यम से, है ना। तो अपनी आंखों का हम सही इस्तेमाल करें, और ये क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, आध्यात्मिक विषयों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन भौतिक विषयों के लेके बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा सुनना करना भक्ति के लिए हितकारी नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव को बता रहे हैं, 11वें अध्याय का 28वें श्लोक का 28वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक है। श्लोक का तात्पर्य यह था कि जो एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसने इस ज्ञान को अच्छे ढंग से समझ लिया है, वो भौतिक वस्तुओं की ना तो बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है ना बहुत ज्यादा आलोचना करता है। भक्तों को ये विचलित नहीं होना चाहिए कि नया स्मार्टफोन आ गया है, नया ये आ गया, 6G आ गया, वो आ गया। भक्तों के लिए युक्त वैराग्य है, निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना चाहिए प्रचार के लिए, लेकिन बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से, और इतना ज्यादा किसी की प्रशंसा से, किसी भौतिक वस्तु की प्रशंसा से प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए कि हम उसी में बह जाएं और अपने लक्ष्य को भूल जाएं। इसलिए ये क्यूरियोसिटी और कंप्लेसेंसी जो इस श्लोक से हम देखते हैं कि शिव जी में हम देख सकते हैं, एक साधक के रूप में देखें तो शिव जी वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, और साथ में बहुत ज्यादा क्यूरियस थे वो, हालांकि वो भगवान के अवतार के लिए क्यूरियस थे, लेकिन हम लोग एक साधना के रूप में देखें तो हमारी क्यूरियोसिटी कई बार गलत विषयों में चली जाती है, तो जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए इस अध्याय से आगे जाके हम देखेंगे बहुत सुंदर हमें शिक्षाएं मिलेंगी, और जो हमारे नित्य दैरी है काम वासना, उसको हम भगवान की कृपा से ही हम इसे ऊपर उठ सकते हैं। और इस अध्याय को जितना हम इस दृष्टिकोण से सुनेंगे और पढ़ेंगे उतना हमें लाभ होगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो जी इसमें जो आपने बताया 11th कैंटो का 28th चैप्टर का श्लोक कि ना ज्यादा प्रशंसा ना ज्यादा आलोचना, तो इसमें जैसे अभी आप नेत्र के बात कर रहे थे कि नेत्र काम वासना जैसे नेत्र से बहुत अटैक करता है, तो अब इसमें प्रशंसा और आलोचना, तो आलोचना वाला पार्ट कई बार आता है कि नहीं देखना, बट देन अगेन द कंटेम्प्लेशन इज गोइंग ऑन इनसाइड, बहुत ज्यादा आलोचना वाला पॉइंट, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, जैसे कि इंडिफरेंट होने की जगह मतलब कि आलोचना करते करते अल्टीमेटली उसको कंटेम्प्लेट कर रहा है वो, तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
एक्चुअली अटैचमेंट एंड अवर्जन ये दोनों ही खतरनाक है, आलोचना करते करते भी हम इसलिए आलोचना ज्यादा करते हैं क्योंकि हम अटैच होते हैं अंदर से, वी वांट दैट थिंग, तो इसलिए वो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मेन जो इसका मुख्य हम इससे बच सकते हैं कि हम जो आध्यात्मिक विषयों में अपनी एब्जॉर्प्शन बनाए, असत वस्तुओं में एब्जॉर्प्शन होने से अच्छा है कि सत विषयों में अपनी एब्जॉर्प्शन बढ़ाए। श्लोक इस प्रकार एतत् विद्वान मत उदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम ना निंदंती न च स्तोति लोके चरति सूर्यवत्। जिसने मेरे द्वारा यहाँ पर वर्णित सैद्धांतिक तथा अनुभूत ज्ञान में स्थिर होने की विधि को भली भांति समझ लिया है, वह भौतिक निंदा या स्तुति में अपने को नहीं उलझाता, वह इस जगत में सूर्य की तरह स्वयं सर्वत्र स्वतंत्र होकर विचरण करता है। तो इन भौतिक विषयों के विषय में ज्यादा ना तो आलोचना करता है ना स्तुति करता है।
That he is doing because कि उसको कोई यूटिलिटी नहीं दिख रही उसके अंदर, अपना काम दिखता है।
या यूटिलिटी नहीं दिख रही, जहां तक वो यूटिलिटी है उसको यूटिलाइज करता है, बट इज नॉट टोटली एब्जॉर्ब्ड इन दैट थिंग। बहुत ज्यादा निंदा या स्तुति करने से हमारी चेतना उसमें अभिनिवेशित हो जाती है, उसमें हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है,
हरे कृष्ण जी। तो ये आपने जैसे इंस्टेंस बताया था प्रभुपाद और उनके डिसाइपल का कि पहली जो पहला जो ग्लास था वो इनोसेंट था, दूसरा डेलिब्रेट था और तीसरा, तो इट इन द सेम में जैसे बीकेसी में विकास महाराज ने बताया कि कामदेव के पास तीन बाण होते हैं, तो दिस कॉन्सेप्ट इज इन द सेम लाइन।
हाँ, पांच बाण बताए हैं कामदेव के पास, पांच बाणों का
तीसरा व्यू कौन सा था? एक इनोसेंट
देन बाय दैट थर्ड लुक, बाय दैट थर्ड लुक मींस यू आर अ विक्टिम नाउ, आप शिकार हो चुके हो। दिस इज हाउ जो काम अपने तीर ऐसे ही छोड़ता है।